तारीख 22 मई दिन शुक्रवार, कार्यक्रम नमस्कार भारत। सीरिया के पुरातात्विक शहर पलमायरा की विरासत इस्लामिक स्टेट के रहमो करम पर।
डर जो है वो ये है कि या तो वहाँ जो टेम्पल्स वगैरह हैं पुराने उनको मिटा दिया जाएगा, और दूसरी बात है वो ये है आईसिस वालों ने असल में बहुत कुछ लूटा है।
अमेरिका ने कहा कि पलमायरा और रमादी पर इस्लामिक स्टेट के कब्जे से लगा है उनके अभियान को झटका। लालू यादव के इस प्रस्ताव पर कि सभी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोले,
राष्ट्रीय जनता दल है हमको यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर करें, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे उनसे।
लेकिन पहले कार्यक्रम में रुकेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से खबर है कि सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा पर चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया है। अब वे शहर में छिपे हुए सीरियाई सेना के जवानों की तलाश कर रहे हैं। पलमायरा के निवासियों का कहना है कि शहर में पानी और बिजली नहीं है और उन्हें आईएस के लड़ाकुओं से प्रतिहिंसा का भी डर है। चरमपंथी पुरातात्विक स्थल में भी दाखिल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन पुरातात्विक इमारतों को नुकसान पहुंचाए जाने की कोई खबर नहीं आई है। अमरीका ने माना है कि पिछले हफ्ते सीरिया में पलमायरा और इराक के रमादी शहर में आईएस चरमपंथियों की जीत एक बड़ी नाकामयाबी है। एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ओबामा ने जोर देकर कहा कि इसका यह मतलब नहीं कि अमरीका और इराकी सरकार आईएस से इस जंग में हार रहे हैं। मैरी हार्फ विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए उनके पास एक स्पष्ट रणनीति है। हमारे पास एक स्पष्ट रणनीति है जो ठीक है और आखिरकार हमें हमारे मकसद को हासिल करने में मदद करेगी। इराक में हमने रमादी के बारे में बात की है और वो एक गंभीर असफलता है। हमने इराक के बहुत सारे क्षेत्र से चरमपंथियों को हटाने में सफलतापूर्वक मदद की है, लेकिन इतने लंबे अरसे से चले आ रहे विवाद में कुछ दिन ऐसे भी होंगे जैसे हमने रमादी में देखे। उतार चढ़ाव तो होंगे ही, लेकिन हमारा मानना है कि हमारी रणनीति उचित है और इसी तरह से आगे बढ़ना ठीक रहेगा। ये थे मैरी हार्फ के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय सुरक्षा संस्था OSCE के मुताबिक यूक्रेन की सेना द्वारा पकड़े गए दो रूसियों ने स्वीकार किया है कि वे रूस के सशस्त्र बल के सदस्य हैं। OSCE के अधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे पूर्वी यूक्रेन में सैन्य सर्वेक्षण के मिशन पर थे। दोनों ने कहा कि वे हथियारबंद तो थे, लेकिन उन्हें हमला करने के कोई आदेश नहीं मिले थे। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन में पहले भी इस तरह के मिशन पर आ चुके हैं। रूस ने हमेशा यूक्रेन में सेना भेजने की बात से इनकार किया है। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि वे ट्यूनीशिया को एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी के तौर पर मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। वर्ष 2011 में तानाशाही के खिलाफ हुए विद्रोह ने ट्यूनीशिया में तानाशाही का तख्ता पलटकर लोकतंत्र की शुरुआत की। तब से ट्यूनीशिया की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने काफी विकास किया है। अमरीका से मिले विशेष दर्जे के तहत ट्यूनीशिया को रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में तो सहायता मिलेगी ही, साथ ही आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। व्हाइट हाउस में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेजी कायद असेप्सी से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि चरमपंथ से निपटने और लीबिया में स्थिरता लाने के लिए ट्यूनीशिया और अमरीका के बीच सहयोग बहुत जरूरी है। खबर है कि इस्लामिक चरमपंथी गुट बोको हराम के चंगुल से छुड़ाए गए कम से कम 260 औरतों और बच्चों को नाइजीरिया के सैन्य अस्पताल में भेजा गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमेरिका ने स्वीकार किया है कि सीरिया के पलमायरा और इराक के रमादी पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा हो जाने से उसके चरमपंथ के खिलाफ जारी अभियान को झटका लगा है। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का यह भी कहना है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हाल की असफलताओं का मतलब ये नहीं कि अमरीका ये लड़ाई हार रहा है। सीरिया से मिल रही खबरों के मुताबिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने ऐतिहासिक शहर पलमायरा के सदियों पुराने खंडहर पर भी कब्जा कर लिया है। यूनेस्को ने इन पुरातात्विक भग्नावशेषों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। आशंका जताई जा रही है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी उन्हें तबाह कर सकते हैं। प्राचीन अवशेषों को बचाने और आम नागरिक के वहां से बचकर भाग निकलने की कोशिशों के बीच ये शहर एक अजीब जद्दोजहद से गुजर रहा है। उधर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसे मिली खबरों के मुताबिक सीरियाई सेना ने इस्लामिक स्टेट के ऐतिहासिक शहर पलमायरा पर कब्जे से पहले वहां की आबादी को पलायन करने से रोका था। बीबीसी संवाददाताओं से मिली रिपोर्टों का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
सीरिया के शहर पलमायरा के निवासियों को डर है कि जैसे जैसे इस्लामिक स्टेट शहर पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा, उन्हें चरमपंथियों की बदले की हिंसा का कहर भी झेलना पड़ेगा। आईएस ने अब शहर के हवाई अड्डे, जेल और खुफिया विभाग के मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया है। दहम एक आम सीरियाई हैं जिनका परिवार पलमायरा में रहता है। सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया। दहम का कहना है,
Everybody was in chaos. The ISIS fighters were crossing the city, north and south, in order following the...
हर कोई हड़बड़ी में था। आईएस के लड़ाकू शहर के उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे और सीरियाई सेना के जवानों का पीछा कर रहे थे। इस सुबह उन्होंने मस्जिद में लाउडस्पीकरों से ये घोषणा की कि अगर किसी भी परिवार ने सेना के जवानों को शरण दी है तो वे आईएस लड़ाकुओं को इसकी जानकारी दें। आज सुबह सैनिकों के शवों की कुछ तस्वीरें भी लीक हुई हैं। कुल मिलाकर आईएस लड़ाकुओं का फोकस ये है कि वो सारे शहर का निरीक्षण करें ताकि जैसा कि वो कहते हैं शहर की सफाई हो जाए। दहम के शब्द। उधर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के एक अधिकारी ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के गठबंधन से अपील की है कि वो इस ऐतिहासिक विरासत को चरमपंथियों के चंगुल से बचाने के लिए कार्रवाई करें। यूनेस्को के मुताबिक इन ऐतिहासिक अवशेषों की तबाही मानवता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि अभी तक इन पुरातात्विक इमारतों को नुकसान पहुंचाए जाने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन इस्लामिक स्टेट पहले भी इराक में नमरोद और हजर की ऐतिहासिक विरासत को तबाह कर चुका है। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल इरीना बोकोवा ने कहा कि पलमायरा को बचाना सिर्फ सांस्कृतिक वजहों से ही जरूरी नहीं है।
The protection of heritage and archaeological sites, I believe, has gone beyond sheer...
मेरा मानना है कि इन प्राचीन स्थलों की हिफाजत का मुद्दा हमारे सांस्कृतिक सरोकारों से आगे चला गया है। अब ये सुरक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि ये चरम पंथ के वित्तीय पोषण का भी हिस्सा है। ये वही लड़ाकू हैं जो तेल की, मनुष्यों की और ड्रग्स की गैर कानूनी तस्करी में शामिल होते हैं। ये कोई कला प्रेमी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस लूट और गैर कानूनी तस्करी के जरियों को बंद करें, खत्म करें। इरीना बोकोवा के शब्द। बेरूत में मौजूद बीबीसी संवाददाता जिम म्यूर का कहना है कि सारी दुनिया का ध्यान पलमायरा की सांस्कृतिक विरासत पर है। इस वजह से चरमपंथियों की पहली प्राथमिकता इस बहुमूल्य ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने की होगी। पलमायरा के प्राचीन शहर का मध्य पूर्व के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसे रेगिस्तान का वेनिस भी कहा जाता है। अभी पलमायरा के एक छोटे हिस्से की खुदाई हुई है और अब भी बहुत बड़ा पुरातात्विक हिस्सा भूमिगत है। अगर इस्लामिक स्टेट ने पलमायरा की ऐतिहासिक विरासत को नष्ट कर दिया तो मध्य पूर्व की एक और विरासत युद्ध की भेंट चढ़ जाएगी।
तो विश्व विरासत में शामिल पलमायरा के भविष्य को लेकर, इस इलाके की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने पलमायरा के महत्व पर बात की सीरिया में रह चुके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद से और पूछा कि पलमायरा का पुरातात्विक महत्व क्यों है।
पलमायरा एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ कौम, मुख्तलिफ समाज के लोग आए और गए। असल में जो बात है वो ये है कि पलमायरा एक तरह से पूरी वो जो उसकी मॉन्यूमेंट्स हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सीरिया की एक बहुत ही रिच तारीख थी जिसमें कई सिविलाइजेशंस और कई कल्चर्स शामिल थे। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसमें ड्रूज थे, उसमें ईसाई थे, उसमें पुराने जमाने के ईरानी थे, उसमें रूमी थे, उसमें यूनानी थे, ग्रीक्स और रोमन्स।
तो पलमायरा में नुकसान पहुंचना और जैसा कि डर एक्सप्रेस किया जा रहा है, जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो डर जता रहे हैं।
दो किस्म के डर हैं। एक डर तो ये है कि वहाँ जो पुराने प्री इस्लामिक यानी इस्लाम के आने से पहले जो वहाँ टेंपल्स हैं और जो इबादतगाहें हैं वहाँ पुरानी, जिन पर बहुत खूबसूरत जो हैं दीवारों पर जो हैं मंजर बने हुए हैं।
किस वक्त की बात कर रहे हैं?
तकरीबन 2000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ।
अच्छा।
फिर वो जो पहले 600 साल AD की जो बात है उसमें वो एक फला फुला उधर बहुत सी उसने बिजनेस लिंक्स अपने बनाए, इजिप्ट से बनाए, इंडिया तक के बनाए। वहाँ पलमायरन जो मर्चेंट्स थे वो अरेबियन गल्फ तक के आके और फिर पर्शियन गल्फ होते हुए इंडिया आते थे बिजनेस करने। तो ये बहुत ही एक रिच, बहुत कॉस्मोपॉलिटन सेंटर था, यूरोप और एशिया के बीच में समझ लीजिए था। तो डर जो है वो ये है कि या तो वहाँ जो टेम्पल्स वगैरह हैं पुराने उनको मिटा दिया जाएगा, और दूसरी बात है वो ये है جس پر لوگ بات زیادہ نہیں کرتے ہیں کہ آئیسس والوں نے اصل میں بہت کچھ لوٹا ہے اور بیچا ہے انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ اینٹیکوٹیز اور آرٹ کی. وہاں ایک میوزیم ہے پالمیرا میں, اس میں بہت سی چیزیں جمع کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو روئنز ہیں وہاں سے بھی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں لے جا کے بیچی جا سکتی ہیں.
آپ نے بتایا کہ پالمیرا سے لوگ آتے تھے, ٹریڈرز آتے تھے بھارت میں, یہ کیا کوئی سمبندھ ہے؟ اور اگر آپ پالمیرا گئے ہیں تو بتا سکیں گے کس طرح کا کیا دکھتا ہے, کس طرح کا دکھتا ہے؟
دیکھیے, سمبندھ تو یوں ہے کہ آج کل جو دنیا کے بارڈرز ہیں وہ ویسے پہلے تھے نہیں. اس سے پہلے لوگ آتے تھے جاتے تھے, ہمارے بھارت سے بہت ہی پرانے سمبندھ تھے. میں جب وہاں گیا تھا تو ایک سمجھ لیجیے ایک ریگستان ہے, وہاں کی دھرتی جو ہے وہ لال ہے, وہاں کھجور کے چند باغ ہیں, تو وہ ان کی جو سبزی ہے ان کا ہرا پن اور پھر وہ جو سرخ لال دھرتی ہے وہ بڑی خوبصورت منظر ہے. پالمیرا اور وہ پورا علاقہ بلکہ سیریا کا ایک طرح سے ایک زندہ گواہی ہے اس بات کی کہ صرف اسلامی یہ دیش نہیں ہے بلکہ یہاں یہودی بھی رہے ہیں, عیسائی بھی رہے ہیں اور کئی اور سماج کے اور دیشوں کے لوگ آ کے بسے بھی ہیں اور ادھر ادھر گئے بھی.
کیمبرج وشودیالے کے ریسرچ اسکالر ڈاکٹر علی خان محمود آباد بتا رہے تھے کہ پلمائرا کا پراتاتوک مہتو کیوں ہے اور اسلامک اسٹیٹ سے خطرے کس طرح کے ہیں.
نمسکار بھارت, بھارتی سمے کے مطابق صبح 6:30 اور 8:00.
انتراشٹری خبروں سے نکل کر اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. بہار کے پورو مکھیہ منتری اور آر جے ڈی کے پرمکھ لالو پرساد یادو نے نتیش کمار کے دھر ویروھی جیتن رام مانجھی سمیت سبھی نیتاؤں کو جلد ہونے والے بہار چناؤ میں بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف ایک جٹ ہو کر ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کہا ہے. مانجھی نے حال ہی میں ہندوستان عوام مورچہ کے نام سے ایک راجنیتک دل کی شروعات کی ہے. ونیت کھرے نے لالو پرساد یادو کے اس نمنترن پر پورو مکھیہ منتری جیتن رام مانجھی سے سمپرک سادھا.
شامل ہونے کا کیا کنڈیشن کیا ہے, جس کارن سے ہم وہاں سے ہٹے ہیں, جو ہمارے 34 نرنے تھے اس کو ہم لوگ لاگو کرنا چاہتے تھے اور اس نرنے کو نتیش کمار جی نے رد کر دیا, اور اس نتیش کمار جی کو نیتا مان کر کے, چیف منسٹر مان کر کے لالو جی آگے چل رہے ہیں. تو جب تک وہ نیتا ان کو مانتے رہیں گے تب تک پھر ان کے ساتھ جانے کا سوچنے کا کیا اوچت ہے. نتیش کمار کو مائنس کر اگر اس میں, یعنی کہ جو راشٹریہ جنتا دل ہے یا جو ان کا کہہ لیا جائے, ہم کو یعنی کہ مکھیہ منتری کے روپ میں کلیئر کریں کہ ان کے نیتتو میں چناؤ لڑیں گے, اس کے بعد پھر ہم لوگ بات کریں گے ان سے. اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہے تو بات کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے.
اپنی پارٹی کا کیا بھوشیہ دیکھتے ہیں اور راجنیتک طور پر کیا آپ پھر بھاجپا سے جڑنے کی کوشش کریں گے, ان کے نزدیک جائیں گے؟
پہلے بھی میں کہتا آیا ہوں, آج بھی میں, 243 سیٹ پر ہماری تیاری چل رہی ہے, ہم لوگ لگ بھگ سبھی کنسٹیچوئنسی میں جائیں گے, کسی سے کوئی مطلب نہیں. چناؤ تک پری پول میں نہیں, پوسٹ پول میں جب ہوگا تب ہم وچار کریں گے. اور پری پول اگر کوئی ہم سے چاہ کرنا تو نیتتو ہمارے ہاتھ میں دے, مکھیہ منتری گھوشت کریں, ہم ساتھ رہیں گے.
لیکن مانجھی صاحب, آپ کی ایک نئی پارٹی ہے, پارٹی کو بیس بنانے میں بھی وقت لگتا ہے, آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ بہت جلدی بہت زیادہ کی امید کریں گے پھر اگر ایسا؟
پارٹی کا معاملہ نہیں, ہم 34 سدسیہ راجنیتی یہاں پر کر رہے ہیں, ایک دو سال سے نہیں. کیجریوال صاحب کتنا دن سے راجنیتی کر رہے تھے اور کیا ان کو سفلتا وفلتا ملی جو آپ لوگوں کے سامنے ہے؟
نہیں, لیکن مانجھی صاحب, لالو پرساد یادو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا سے لڑنے کے لیے سبھی پارٹیوں کو, سبھی دلوں کو ساتھ میں آنے کی ضرورت ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
سوال ہے کہ وہ پہلے جو چناؤ میں مکھیہ منتری بنے تھے تو کیا بھاجپا سے انہوں نے سہیوگ نہیں لیا تھا؟ تو اس سمے بھاجپا ٹھیک تھی, آواز سمپردائک ہو گئی.
مطلب آپ اس بات سے نکار نہیں رہے ہیں کہ اگر وقت پڑا, ضرورت پڑی تو آپ بھاجپا کے نزدیک جا سکتے ہیں؟
ہاں, ہم تو کہا کہ پوسٹ پول میں سمبھو ہے, ہم بھاجپا کو بھی ضرورت پڑنے پر ساتھ لے سکتے ہیں.
کیا بھاجپا کے نیتاؤں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے, پوسٹ پول الائنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں ساتھ میں چناؤ لڑنے کی؟
ابھی کنہیں سے بات ہماری نہیں ہوئی ہے. ہم پردھان منتری جی سے سمے مانگا ہے, ہم پردھان منتری سے ہی بات کریں گے اور کنہیں کوئی نیتا سے ہماری بات نہیں ہوگی. اگر پردھان منتری کسی کو انسٹرکٹ کریں گے کہ مانجھی جی سے بات کیجیے اور وہ بات کریں گے تو ہم بات کریں گے, ایسے اپنے سے کوئی نیتا سے ہماری بات نہیں ہوگی. چناؤ سے پہلے کسی پرکار کا تال میل آپ سے کرنا نہ تو ان کے ہت میں ہوگا نہ میرے ہت میں ہوگا.
यानी अगर भाजपा के साथ भी जाते हैं तो आप कह रहे हैं कि आप चुनाव अलग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें अगर ये संभव हुआ तो आप, या उनकी अगर बात बन गई तो आप भाजपा के साथ जाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है?
मान लीजिए कि हमारी सरकार बनती दिखेगी तो हमको किसी से मतलब नहीं है, सरकार बनती नहीं दिखी तो वैसी परिस्थिति में हम किसी ले सकते हैं, या किसी की सरकार बनती नजर आवेगी और हमारे मत से सरकार बन सकती है तो उसमें भाजपा भी अगर साथ आने की बात होगी तो उसमें भाजपा हमारे लिए अंतर भी नहीं होगा।
ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो कि कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव बाद गठबंधन का विकल्प खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार ने क्या प्रमुख वादे किए थे और उन्हें पूरा करने की दिशा में बीते एक साल में क्या कुछ हुआ। वाराणसी शहर में गंगा नदी किनारे कुल 84 घाट हैं, जिनमें से ज्यादातर के हाल बुरे हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 80 घाट पर झाड़ू उठाकर सफाई करने में सहयोग दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ खास बदलाव नहीं दिखता। नागालैंड की रहने वाली तेम सतुला इमसोंग कई महीनों से इन घाटों की सफाई में जुटी हैं। नितिन श्रीवास्तव ने बात की उनसे।
हम इस वक्त बनारस के घाट पर हैं और हमारे साथ तेम सतुला हैं, जो पिछले कई महीनों से यहाँ पर घाटों की सफाई में लगी हुई है। एक साल से यहाँ के घाट, यहाँ की सफाई बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। आप के ऐसे यंगस्टर्स क्यों इन घाटों की सफाई से जुड़े?
मैं यहाँ पे आके 2 साल हो चुका है। यहाँ घाट पे आके मेरे को शांति मिलता है। एक्चुअली बाहर अंदर बहुत धूल है, रास्ता भी खराब है, तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आके इतना पीसफुल शांति मिलता है तो, लेकिन तब आता है तो भी एक चीज जो बार बार मेरे दिमाग में आता था, गंदगी यहाँ पे भी है तो कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। ऐसा करके हम लोग ने वो प्रभु का देखा तो द टाइम वो सबसे वर्स्ट कंडीशन में था, तो वहाँ से स्टार्ट करके हम लोग ने ये मिशन शुरुआत हुआ था।
इस वक्त हम खड़े हैं राजा घाट के सामने, उस तरफ देख रहे हैं, दूर तक 80 घाट है, नावें चल रही हैं। वैसे हमारे पीछे गंगा जी हैं और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 भैंसे भी हैं जो नहा रही हैं।
आगे भी बहुत है,
आगे भी बहुत सारी भैंसे, उनको तो मैं गिन भी नहीं सकता, शायद 15, 20, 25 है। पहले उधर वाला घाट है प्रभु घाट, वहाँ की सफाई आपने शुरू की कि उसके बाद अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, बबुआ पाणे घाट कहते हैं इसको बनारस में, मकसद क्या है?
फर्स्ट थिंग वी वांट टू सी वाराणसी क्लीन।
आप वाराणसी को साफ देखना चाहते हैं?
हाँ जी, और स्पेशली घाटों को इतना साफ होगा तो आई थिंक टूरिस्ट भी बहुत अट्रैक्ट होगा। दे आर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ गार्बेज, अच्छा नहीं लगता है।
टूरिस्ट आके, विदेशी पर्यटक आके यहाँ पे गार्बेज, कूड़े कचड़े की फोटो लेते हैं,
जाके देखो इंडिया इतना साफ नहीं है ऐसा बोल सकता है, तो ऐसा वाला सोच और ऐसा ठिकाना नहीं जाता है। और यंगस्टर्स को लेके मेरे ये शहर वालों को भी लाइक एक जागरूक लाना चाहता हूँ,
जागरूकता लाना चाहती हूँ। बनारस पहली बार कब आई थी?
यहाँ पे रहने के लिए मैं 2012 पे आया हूँ।
पढ़ने आई थी? कैसे, क्या, किस सिलसिले में आई?
एक्चुअली मेरा एक एनजीओ है, वो यहाँ यूपी से रजिस्टर्ड है और पहले से रजिस्टर्ड था, लेकिन 2012 में मैंने सोचा वो समाज सेवा के लिए फुल टाइम देगा करके, नहीं तो मैं पहले दिल्ली में था और यहाँ पे फुल टाइम समाज सेवा में देगा करके
ये सोच के आप यहाँ पर आ गई। क्या मोदी जी तक ये बात पहुँची है?
जी, मोदी जी ने भी हमारा टीम को बता ही दिया है, कंग्रेचुलेशन दिया और इतना हम लोग वो देख के भी बहुत खुश है। और
लेकिन मोदी जी ने बधाई दी है, लेकिन मोदी जी की टीम क्यों नहीं सफाई कर रही है यहाँ पर घाटों पे?
वो तो पता नहीं, लेकिन आफ्टर वी स्टार्टेड बीजेपी वाराणसी में भी, वाराणसी लोग भी 2-3 Sundays बैक वो लोग भी सब घाटों में आके वो लोग भी साफ किया।
मोदी के साल भर पूरा होने पर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र का जायजा ले रहे थे नितिन श्रीवास्तव। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे अखबारों की, अखबार के पन्ने आप पलट चुकी हैं।
जी हाँ, आप, मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ जो खबरें सभी अखबारों में हैं वो 3-4 खबरें हैं। एक तो यमुना एक्सप्रेसवे पे लड़ाकू विमान जो है वो हाईवे पर उतारा गया, Mirage 2000, और वो एक बहुत ही लोगों के लिए बहुत अचंभित करने वाला दृश्य था। और ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अखबार बता रहे हैं कि पाकिस्तान 15 साल पहले ये कर चुका है। दूसरी खबर, मुसलमान युवक को मुंबई में एक एक्सपोर्ट कंपनी में मुसलमान होने की वजह से नौकरी देने से इनकार कर दिया, ये भी सभी अखबारों ने लिया है। गुर्जर आंदोलन फिर आरक्षण को लेकर सरकारी नौकरियों में शुरू हो गया है, और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच जो जंग चल रही है नौकरशाही की नियुक्तियों को लेकर, उसका फैसला गृह मंत्रालय ने की तरफ चला गया है, वो नोटिफाई करेगा तो उस पर फैसला लिया जाएगा।
और ऐसा बताया जा रहा है कि कल गृह मंत्रालय में इस बारे में लंबी बैठक भी हुई।
फिर दैनिक जागरण में एक खबर है कि फेसबुक पर तस्वीर अपलोड होने से दुखी युवती ने जान दे दी। ये उत्तरी कश्मीर का किस्सा है, मतलब दुर्घटना है एक तरह से। द इकोनॉमिस्ट के कवर पर मोदी आ गए हैं, ये भी दैनिक जागरण में खबर है। नई दुनिया ने एक दिलचस्प विश्लेषण निकाला है कि ये अर्नेस्ट एंड यंग का सर्वे किया गया है कि 66% कारोबारियों को सही लगती है रिश्वत, यानी वो रिश्वत देना, हम भ्रष्टाचार के विरोध में अभियान चला रहे हैं लेकिन उन्हें रिश्वत देना बिल्कुल सही लगता है। दैनिक भास्कर में खबर है कि गिलानी का आवेदन जो है वो अधूरा है, इसलिए उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा। उनके पासपोर्ट को लेके कल ही काफी बवाल हुआ था, उसमें बायोमेट्रिक वर्णन नहीं है और उन्होंने शुल्क भी जमा नहीं किया है। दूसरा, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का जो स्वराज अभियान था उसने अब राष्ट्रीय टीम बना ली है, ये भी दैनिक भास्कर की खबर है। यात्रियों के विमान में रहने के दौरान ही पेस्टिसाइड स्प्रे पर एनजीटी नाराज हो गई है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबार में क्या क्या छपा है बताने के लिए। और अब हम सुनेंगे ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी।
भारत वालों को खुश रखना बड़ा मुश्किल काम है। 10 साल तक इस बात का रोना था कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो बोलते ही नहीं। मनमोहन की जगह उनका नाम मौन मोहन रख दिया था। अब शिकायत यह है कि नए प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार में बोलना शुरू किया और 1 साल होने को आया अब तक बोले ही जा रहे हैं। कहां तो खुश होना चाहिए था कि जब देखो दौरे पर रहते हैं, 1 साल के अंदर 17 देशों का दौरा कर लिया, 8-9 देश और हो आते तो ओबामा के पहले साल के जो 25 विदेशी दौरों का रिकॉर्ड है वो तोड़ देते। लेकिन प्लेन में बैठे नहीं मोदी जी कि जनता घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह शुरू हो जाती है, घर कब आओगे, घर कब आओगे। इन लोगों की चिख चिख की वजह से ही बेचारे टीवी चैनल्स की एक अच्छी भली हेडलाइन मिस हो गई, मोदी ने ओबामा को पछाड़ा। और अब जब मोदी की घर वापसी हुई है तो भाई लोग बैठकर घर में आईपीएल देख रहे हैं। साल पूरा होने पर मथुरा में रैली हो रही है और 2 लाख लोग जुटाना मुश्किल हो रहा है। सुना है 6,000 बीजेपी के मुलाजिम भीड़ जुटाने में लगे हैं। आप कह रहे होंगे कि आप वॉशिंगटन में बैठे बैठे मथुरा की खबर क्यों ले रहे हो। भाई साहब, मामला यह है कि मोदी जी ने 1 साल में ही ओबामा की नींद उड़ा रखी है। ओबामा डरे सहमे तो हैं ही, चिढ़े भी हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे डील कैसे करें। चिढ़े इस बात से हैं कि पहले तो रिपब्लिक डे पे बुलाया, बराक ये बराक वो कहकर गलबहियां डाली, 3 घंटे तक बोरिंग सी परेड दिखाई, और ओबामा ने सब कुछ हंसते हंसते सहा ये सोचकर कि इस बंदे को खिला पिलाकर मोटा करना है चीन के खिलाफ जरूरत पड़ने पर पहलवानी करने के लिए। लेकिन पहलवानी क्या खाक करेंगे, ये साहब तो चीन जाकर हिंदी चीनी का नारा लगाने लगे। एक तरफ पुतिन को गले लगाते हैं, दूसरी तरफ अमरीका को अपना हम सफर बताते हैं। लेकिन ये सब तो दीन दुनिया वाली बातें हैं, असली डर तो ओबामा को सता रहा है कि मोदी कहीं उनके रिटायरमेंट प्लान की ना ऐसी तैसी कर दें। अब ओबामा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भाषण बड़ा अच्छा देते हैं, तो उन्होंने भी सोचा था कि 1.5 साल में जब रिटायर हो जाएंगे तो दुनिया भर में घूम घूम कर भाषण देंगे और डॉलर कमाएंगे। आखिर बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन ने $करोड़ों भाषण दे देकर कमा लिए हैं। अगर बिल और हिलरी को 1 लेक्चर का $3-5 लाख तक मिलता है तो ओबामा भी उतनी कमाई तो कर ही लेंगे। साथ ही ये उम्मीद भी है कि हिलरी राष्ट्रपति बन गई तो मुकाबला सिर्फ बिल से रह जाएगा, और बिल का दिल तो कई जगहों पर उलझा रहता है, तो ज्यादातर भाषण के बुलावे ओबामा को ही आएंगे और फिर होगी डॉलरों की बरसात। मिशेल जैसी ड्रेस चाहेंगी वैसी खरीद देंगे। जब से भारत से लौटी हैं हमेशा शिकायत करती हैं, मोदी के कपड़े मेरे कपड़े से बेहतर कैसे। दुनिया भर में पहले मिशेल के कपड़ों के स्टाइल की बात होती थी, अब सब मोदी के स्टाइल की बात करते हैं। लेकिन ओबामा को डर सता रहा है कि मोदी इन सब मंसूबों पर पानी न फेर दें। दुनिया भर में भाषण दे देकर अपनी ब्रांडिंग बढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी भी बेहतर होती जा रही है, और दुनिया भर में इतने देसी भर गए हैं कि भीड़ भी अच्छी खासी जुट जाती है। ऐसे में क्या पता कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां $लाखों देती हैं वो सोचेंगी आधी कीमत देकर मोदी से ही भाषण दिलवा लें, बल्कि जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक तो वो पैसे भी नहीं लेंगे। तो जैसे आउटसोर्सिंग कर करके अमरीकी नौकरियां इन कंपनियों ने खत्म की, वैसे ही भाषण की आउटसोर्सिंग करने में कितना वक्त लगता है। लेकिन ये तो 1.5 साल के बाद की चिंता है। अभी तो ओबामा ये चिंता करें कि पिछली बार सितंबर में मोदी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आए तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर ऐसा रॉकस्टार वाला शो किया कि पूरी दुनिया में चर्चे हुए। इस बार क्या पता वॉशिंगटन के नेशनल मॉल को पटना के गांधी मैदान में बदलने की तैयारी के साथ आ रहे हो। ब्रजेश उपाध्याय, BBC वॉशिंगटन।
और अब कार्यक्रम में उन खबरों की बात करेंगे जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
नरेंद्र मोदी सरकार का एक वर्ष पूरा होने के मौके पर नेटवर्क 18 मोदी सरकार ईयर वन डायलॉग नाम से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित वक्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। IPL का दूसरा क्वालिफायर मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की प्रमुख जे जयललिता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर प्रतिबंध लगाया जाए। संभावना है कि जयललिता 23 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। अदालत से बरी होने के बाद आज जयललिता पहली बार चेन्नई में सार्वजनिक तौर पर दिखाई देंगी। आयरलैंड में आज समलैंगिक विवाह पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा। ओपिनियन पोल्स इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आयरलैंड दुनिया में पहला ऐसा देश होगा जहां मत संग्रह से समलैंगिक विवाह को स्वीकृति मिलेगी। लाटविया की राजधानी रीगा में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन दोबारा सत्ता में आने के बाद पहली बार यूरोपीय संघ के सदस्यों के सामने संघ में सुधारों की अपनी योजना पेश करेंगे। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यूक्रेन और विद्रोहियों के प्रतिनिधि उस शांति समझौते और राजनीतिक समझौते पर बातचीत करेंगे जो फरवरी में फ्रांस और जर्मनी की मदद से तैयार किया गया था।
और अब कार्यक्रम में खेल की बात करते हैं। IPL में आज रांची में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। हमारे सहयोगी विदित मेहरा ने बात की पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अतुल वासन से।
देखिए, मुझे लगता है कि चेन्नई अब बहुत खतरनाक हो चुकी है, उनको आदत नहीं है हारने की। और मुझे लगता है कि इस सूरत में जब अब उनको, क्योंकि टॉप में हमेशा रहते हैं, उनको मौका मिला है और बहुत करीबी मामला रहा इस समय। और मुझे लगता है कि जो करंट फॉर्म है, दिक्कतें उनकी टीम में है। और अब रविंद्र जडेजा जो ड्रॉप हो गए हैं, अब किस मेंटेलिटी से उतरेंगे ये बड़ी बात है, क्योंकि पूरे सीजन परफॉर्म नहीं किया है। और दूसरी बात चल रही है कि सभी खिलाड़ियों को वापस पूल में आना चाहिए। तो इसके चलते हुए मुझे लगता है कहाँ ये कल का मैच उनके फ्यूचर के लिए, आगे इतनी कटकने लगाई जा रही थी, अभी तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना बाकी है, तो काफी कुछ प्रेशर है धोनी के ऊपर।
चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स में कौन से वो गेम चेंजिंग खिलाड़ी हैं जो कि अपना जादू दिखा सकते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि मैकलम के जाने के बाद थोड़ा बैलेंस तो बिगड़ा है जरूर, पर फिर भी गेम चेंजर सुरेश रैना को मैं कभी डिस्काउंट नहीं करूंगा। सारे लोग जैसा मर्जी कहता रहे, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच निकाल के ले जा सकते हैं। डिफेंसिव फेफ टू प्लेसी भी थोड़ा सा शेडो में रहे इस बार मैकलम के, पर अब उनका समय आया। मुझे लगता है कि अब मैकलम नहीं तो उन्हें वो रोल लेना होगा। और गेंदबाजी में फिर ड्वेन ब्रावो का रोल है, पर मुझे लगता है जडेजा जो रोल प्ले करते हैं फिनिशर का, ना वो बैटिंग में कर पा रहे हैं ना गेंदबाजी में, तो अश्विन और उनके ऊपर दबाव रहेगा कल।
और अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें, जो कि जिन्होंने क्वालिफायर जो मैच हुआ वो जीता, उनकी टीम में किस पर नजर रहेगी? क्या मनदीप सिंह, जिन्होंने बहुत ही अच्छे हाफ सेंचुरी बनाई, क्या वो ज्यादा इस बार अच्छा कर पाएंगे?
हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है कि देखिए, भारतीय यंगस्टर्स को ही ज्यादा फोकस में रहना चाहिए। मुझे भी लगता था सारे ओवरसीज जो सितारे हैं थोड़ा सा लाइमलाइट ले जाते हैं, पर बीच बीच में जब ऐसी पारियां होती हैं, चाहे श्रेयस अय्यर की बात करें, पांड्या की बात करें, तो बीच बीच में ऐसे खिलाड़ी जब खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव, तो दिल खुश होता है कि जिस के लिए बनाया गया था IPL, उसका कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है। और हर मैच में तो नहीं परफॉर्म करने की उम्मीद कर सकता, क्योंकि प्रेशर रहता है, पर ये पता लग जाता है कि टैलेंट किसमें। और मनदीप ने बहुत अच्छी पारी खेली, और उस पारी के बाद दिल तो जरूर खुला होगा। और जब आपके पास विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स ऊपर हो, तो वैसे ही आप दिल खोल के बल्लेबाजी करते हैं।
आज के मैच का हाल अतुल वासन से विश्लेषण कर रहे थे विदित मेहरा। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
BBC समाचार। खबर है कि सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा पर चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया है। चरमपंथी पुरातात्विक स्थल में भी दाखिल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन पुरातात्विक इमारतों को नुकसान पहुंचाए जाने की कोई खबर नहीं है। अमेरिका ने माना है कि पिछले हफ्ते सीरिया में पलमायरा और इराक के रमादी शहर में IS चरमपंथियों की जीत एक बड़ी नाकामयाबी है। यूरोपीय सुरक्षा संस्था OSCE के मुताबिक यूक्रेन की सेना द्वारा पकड़े गए दो रूसियों ने स्वीकार किया है कि वे रूस के सशस्त्र बल के सदस्य हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि वे ट्यूनीशिया को एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी के तौर पर मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था दीपक जसरोठिया ने। एक घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।